भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए ना सत विघ्न हने। देखो आज का जो लेख है ना इसको केवल आप सुनते जाइएगा, केवल सुनने का मनन करने का ध्यान करने का विषय है। जहां तक हो अपने आप को स्थिर करके सुनिएगा, बाल बच्चों को थोड़ा शांत रखिएगा क्योंकि शांति का लेख है। बहुत ध्यान से सुनना भाई। भगवान के जितने अवतार वे हैं उनमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अवतार प्रधान हैं। ध्यान के पूर्व आसन की जरूरत है। गीता में भगवान ने बताया आसन के लिए कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम् नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम्। भूमि भी शुद्ध हो, उसके ऊपर कुशासन या मृगछाला या वस्त्र बिछे हुए हो, न बहुत अधिक ऊंचा है न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके बैठे। इससे पवित्र और क्या देश होगा। दूसरा एकांत देश और उस पर गंगा जी की बालू, ये बड़ी पवित्र है। चैला जन कुशोत्तरम, तीनों मिलाकर आसन बनाया जावे तो भी गंगा जी की रेणुका से बढ़कर नहीं हो सकता है। यदि कहो कि तो फिर भगवान ने गंगा जी की रेणुका ही आसन क्यों नहीं बताया। बात यह कि सबके लिए सुगम नहीं है। बड़ा पवित्र आसन है, सादगी है, यहाँ के परमाणुओं में ध्यान लगाने की शक्ति है। अब आप लोग अपना आसन जमाइए। गीता के अनुसार समम काय शिरो ग्रीवम, काया सिर और ग्रीवा को समान रखें। ये मेरुदंड है, इसको सधाया रखें। इससे निद्रा नहीं आएगी और नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाए। निद्रा आलस्य नहीं आवे तो नेत्र बंद कर सकते हैं। भगवान के स्वरूप का ध्यान पूछा कि बाहर में करें कि भीतर में करें, जैसा आपको सुगम पड़े। पूछा साकार का ध्यान करें कि निराकार का, तो निराकार के सहित साकार का करें। जैसे आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा है, आकाश की ज्योतो परमात्मा का निराकार स्वरूप है और चंद्रमा की ज्योत साकार स्वरूप है। हृदय आकाश में ध्यान करो, चाहे ब्रह्म आकाश में ध्यान करो। साकार निराकार एक ही वस्तु है, दो है ही नहीं। एक ही के दो भेद है, ऐसे परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के मुखारविंद की उपमा चंद्रमा की दी जाती है। सगुण साकार में विष्णु का करें या राम का करें, जिसमें आपकी रुचि हो वही आपके लिए ज्यादा फायदे की चीज है। चंद्रमा की उपमा तो है ही, नाम के साथ भी जोड़ दिया गया, जैसे राम चंद्र, कृष्ण चंद्र, श्री कृष्ण दास नहीं कृष्ण चंद्र। यदि कहूं प्रकाश तो चंद्रमा से सूर्य का अधिक है, फिर रामचंद्र क्यों कहा, राम सूर्य क्यों नहीं कहा, कृष्ण चंद्र क्यों कहा, कृष्ण सूर्य क्यों नहीं कहा। बात यह है कि सूर्य में ताप है, चंद्रमा में शीतलता है, ताप नहीं है। और पूर्णिमा के चंद्रमा की उपमा दी गई है कारण कि वे पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए उनका जो ध्यान है वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान है। बर्फ जल वास्तव में जल तत्व है, इसी तरह इनमें कुछ भी फर्क नहीं है। वे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इसीलिए तो उन्होंने ये बात कही है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। भगवान ने यह एकता दिखलाई कि सारे नाम मेरे हैं, वस्तु से धातु से एक ही है। जैसे जल बर्फ का बना, तो इसमें ये बात कही जा सकती है कि जल बर्फ के रूप में बना, कारण कि जल विकारी है, परंतु परमात्मा में विकार नहीं है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा ही कृष्ण चंद्र है। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होने पर वे कैसे हैं, क्या है, ये जाना जा सकता है। जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक वह धारणा है, या उसे मान्यता कह सकते हैं। भगवान मिलते हैं अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति का मतलब है नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना, या हर वक्त उनके नाम का जप करते रहना। ये सब अनन्य भक्ति के प्रकार हैं। आज मैं आपको विशेष करके ध्यान का ही प्रकरण सुना रहा हूँ। पूर्ण आनंद, अपार आनंद, घन आनंद, आनंदी आनंद, आनंदमय आनंदमय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आनंद की ही मूर्ति है। वे ही आनंद के रूप में प्रकट हुए। भगवान का जन्मना मरना नहीं है, उनका प्रकट होना छिप जाना है। प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, नहीं तो छिप कर रहते हैं, पर रहते सब जगह है। जिस समय गोपियों के हृदय में अभिमान आ जाता तो भगवान उन्हीं के अंदर ही छिप जाते, और जब उनमें प्रेम की बाढ़ आती तो ये भगवान उन्हीं में प्रकट हो जाते। भगवान बड़े प्रभावशाली हैं। वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वे एक क्षण में सारे संसार का कल्याण कर सकते हैं। वे महान हैं। नीच से नीच, पापी से पापी को भी एक क्षण में दर्शन दे सकते हैं। फिर दर्शन क्यों नहीं देते, ये उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा कोई कारण को लेकर होती है? नहीं, हेतु को लेकर। जो हेतु को लेकर होती है इच्छा, स्वाभाविक मानो तो स्वाभाविक होती है, हेतु को लेकर मानो तो हेतु को लेकर होती है। यदि कहो कि बिना हेतु दर्शन दे सकते हैं, तो फिर हमें दर्शन क्यों नहीं देते? आप सबको, आप इस बात को मानते नहीं कि बिना हेतु भी दर्शन दे सकते हैं, इसलिए दर्शन नहीं देते। खास बात, आप इस बात को मानते नहीं है कि बिना हेतु भी दर्शन दे सकते हैं, इसलिए दर्शन नहीं देते। आप तो ये मानते हैं कि हमारे पाप नष्ट होंगे, हम परम पवित्र शुद्ध होंगे, और हम कितना ही जप करेंगे, कितना ही ध्यान करेंगे, तब जाकर दर्शन देंगे। वास्तव में ये बात नहीं है। हमारे पाप रहते हुए भी दर्शन दे सकते हैं, दर्शन होने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य अंधकार रहते हुए दर्शन नहीं देता, ये बात नहीं है। सूर्य के प्रकट होने से अंधकार नहीं रहता, ये बात है। तो फिर पापियों का ही वहाँ गुजारा है क्या? है। जो अपने को धर्मात्मा मानता है, भगवान वहाँ से हट जाते हैं। क्यों? उन्हें डर लगता है, भगवान को भी डर लगता है। यह तो समझने के लिए कहना है, असल में भगवान उसे पात्र नहीं समझते हैं। भगवान कहते हैं जो अपने को धर्मात्मा समझ लिया, वह अपने बल पर अपना सुधार करो। जो अपने को निराधार मानता है, भगवान तो उसी के पास जाएंगे। जब तक द्रौपदी को किसी का सहारा था, तब तक भगवान नहीं आए। गजेंद्र को जब तक अपने कुटुंबियों का सहारा था, तब तक भगवान नहीं आए। जो गुण भगवान में नहीं, वो किसी में नहीं। वे सारे गुणों के सागर हैं। भगवान से प्रेम करना चाहिए, गुणों को लेकर, प्रभाव को लेकर, और उससे भी बढ़कर बात है प्रेम। प्रेम को लेकर करना चाहिए, स्वाभाविक करना चाहिए। आरंभ में गुण प्रभाव को लेकर प्रेम होता है। जब भगवान के तत्व को समझ लेता है, तो वो प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। गुणों को लेकर जो प्रेम होता है और प्रभाव को लेकर जो प्रेम होता है, वो भी अच्छा है, किंतु स्वाभाविक प्रेम सबसे दामी है। लड़के में माता पिता का स्वाभाविक प्रेम होता है। आगे जाकर लड़के के प्रेम में कमी भी आ सकती है, किंतु माता के प्रेम में कभी कमी नहीं आती। माता का प्रेम हट भी जाए, किंतु परमात्मा का प्रेम तो कभी हटता ही नहीं है। कमी है तो हम लोगों की है। हम लोगों का स्वाभाविक प्रेम परमात्मा में होना चाहिए, किंतु है नहीं। इसी कमी की पूर्ति करनी चाहिए। जैसे किसी का गुण प्रभाव को लेकर प्रेम है और किसी का स्वाभाविक है, उनमें जिसका स्वाभाविक प्रेम है वो ऊंचे दर्जे का है। वास्तव में तो पूर्ण प्रेम परमात्मा को समझने से ही होता है। इसके लिए कोई दृष्टांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सदृश कोई वस्तु नहीं है। फिर कल्पना करके एक बात बताई जाती है। समझ लो, एक स्त्री है, उसका लड़का छोटी अवस्था में साधु हो गया। जब बड़ी अवस्था हुई, तब वो महात्मा बन गया। कोई समय घूमते फिरते अपने देश में आ गया, तो उसके गुण प्रभाव को सुनकर लोग मिलने के लिए गए। उसकी माँ भी गई। उसे ये पता नहीं है कि तेरा ही लड़का है। वह भी एक किनारे बैठ गई। उसकी माँ ने भी व्याख्यान सुना और लोगों ने भी सुना। बड़ी खुशी हुई, एक अच्छे महात्मा का दर्शन हो गया। सब लोग कहने लगे, बड़े अच्छे महात्मा आए, बड़ा अच्छा प्रवचन हुआ, बड़ा प्रभावशील प्रवचन था, और उनके दर्शन भी हमको हो गए। ये बात चल पड़ी। तो कहा, इस महात्मा का नाम क्या है? तो किसी ने पता बता दिया महात्मा को, सबका नाम पता महात्मा को बता दिया। तब महात्मा को पता लगा कि ये तुम्हारी माँ है। तब महात्मा ने अपनी माँ को उठकर प्रणाम किया। जब माँ को ये ज्ञान होता है कि ये तेरा ही लड़का है, तब उस माँ को कितना आनंद होता है। पहले जो प्रसन्नता थी, वो प्रसन्नता उस महात्मा समझकर गुण प्रभाव को लेकर थी। पर जब ये पता लगा कि ये मेरा ही बेटा है, तब जो उस माँ को प्रसन्नता होती है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं होती। संबंध स्थापित हो गया, ये मेरा लड़का है। वह लड़का माता का ही अंग है, हृदय का टुकड़ा है। इससे भी बढ़कर ये जीव परमात्मा का अंश है, या परमात्मा का टुकड़ा है, या परमात्मा की आत्मा है। इस अंश में ये दृष्टांत है। इसी प्रकार परमात्मा के साथ नित्य संबंध है कि परमात्मा अंशी है और मैं अंश हूँ। अंश और अंशी एक से एक ही वस्तु की चीज होती है, एक ही वस्तु होती है। वस्तु से तो दो है तो उसका अंश ही नहीं। पीतल का लोटा रांगा का अंश नहीं हो सकता, कारण कि पीतल धातु ही दूसरी है, रांगा धातु ही दूसरी है। बर्फ का ढेला कभी पृथ्वी का अंश नहीं माना जा सकता, क्योंकि पृथ्वी का अंश ही दूसरा है, बर्फ का अंश बर्फ का अंश ही दूसरा है। इसी प्रकार से ज्ञान हो जाए तो निर्भयता आती है। माँ महात्मा को पूछती थी, गुण प्रभाव सुनकर खुश हो रही थी कि ओ हो आज एक अच्छे महात्मा आ गए, दर्शन हो गया। सब लोग जैसे खुश थे वैसे माँ भी खुश थी। जब लड़का पगों में पड़ा तो भय हुआ कि अरे ये क्या हो गया, ये महात्मा मेरे चरणों में। किंतु जब ज्ञान हो गया कि मेरा ही लड़का है, तब भय और संकोच दूर हो गया। इसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान होने पर भय संकोच सब चले जाते हैं। हमें परमात्मा का प्रभाव जानने की जरूरत है, कारण कि हमें परमात्मा की जानकारी नहीं है। हम लोग इसलिए हताश होते हैं, निराश होते हैं कि कहाँ तो परमात्मा और कहाँ हम। हमें कभी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं? इतने बड़े परमात्मा के हमें कैसे दर्शन हो सकते हैं? ये बात हम समझते हैं तो उनके लांछन लगता है, परमात्मा के लांछन लगता है, कारण कि वे तो हेतु रहित दया करने वाले। यदि कहो कि फिर वे दर्शन देते क्यों नहीं है, तो हमने बताया ना कि हम दर्शन चाहते कहाँ हैं। हम भगवान के लिए पागल हुए क्या? भगवान के लिए व्याकुल हुए क्या? न तो भगवान के लिए दीवाने हुए, न व्याकुल हुए, न कभी हैरानगी उठाई। पागलपन भी होना चाहिए, मिलने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। भगवान कब मिलते हैं? तब जब हम समझते हैं कि भगवान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, भगवान के भजन ध्यान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कोई भी बात आपके समझ में आ जाए इनमें से, तो भगवान मिल सकते हैं। भगवान से बढ़कर जब तक आप दूसरी वस्तु समझ रहे हैं, तब तक भगवान दूर रहेंगे। भगवान समझते हैं मुझसे बढ़कर दूसरी वस्तु समझता है, तो मैं क्यों जाऊं, क्यों सिर फोड़ी करूं, क्यों दर्शन दूं। बहुत से आदमी व्याख्यान सुनने के लिए इकट्ठे हैं, व्याख्यान दाता कई है, एक भला आदमी वहाँ व्याख्यान क्यों देगा? जब उसका व्याख्यान लोग नहीं सुनना चाहेंगे तो क्यों देगा? हम कुछ न कुछ चाह ही रहे हैं और उसमें हमारा संतोष हो रहा है। भगवान कहते हैं ठीक है, तू तेरी चाहना करता है, उसमें प्राप्ति पर संतोष करता है तो करता रहे। जब तुम्हारे हमारी चाहना होगी, दूसरे की गुंजाइश नहीं रहेगी, तब हम तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे। ये नियम ही है, ये साधुओं का भी नियम है। साधु भिक्षा के लिए जाए, किसी के घर में कोई भिक्षा के लिए खड़ा हुआ हो तो वो साधु उस घर में नहीं जाएगा। अथवा कोई भिक्षा के लिए खड़ा है और दूसरा साधु वहाँ आ गया अनजान में, तो वो पहले वाला साधु चुपचाप बिना भिक्षा लिए रवाना हो जाएगा। क्योंकि साधु का नियम है, जिस घर से कोई भिक्षा लेता हो उसके ऊपर दूसरा जाकर भिक्षा न ले। भगवान कम से कम साधु तो है ही ना, इतना तो वो जानते ही है कि इसके मन में दूसरी इच्छा भरी पड़ी तो हम क्यों जाए। भगवान सब जगह व्यापक है, दयालु है, प्रभावशाली है। ये बताने का अभिप्राय यही है कि आपके हृदय में कमजोरी है कि भगवान हमें खूब भजन करने से मिलेंगे, क्योंकि हम पापी हैं, दुराचारी हैं। ये आपकी कमजोरी मिटाने के लिए कहा जाता है कि भगवान दयालु है। बात ठीक है। भजन ध्यान तेज होने से भगवान मिलते हैं, किंतु भजन ध्यान तेज उसकी कृपा से होता है। भजन ध्यान तेज हुए बिना भी भगवान मिल जाते हैं। भगवान के मिलने के बाद फिर तो भजन ध्यान होता ही रहेगा। भजन ध्यान तेज हुए बिना भी भगवान मिल जाते हैं, ऐसा आप मान लो तो आपको मिल जाएंगे। आप ऐसा मान लो। प्रश्न, क्या बिना भजन ध्यान के भी मिल सकते हैं? हाँ हाँ, आपकी मान्यता होगी तो क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान तो ऐसे ही हैं, आपको विश्वास होना न होना दूसरी बात है। कैसा ही कोई नीच हो, न जाति की जरूरत, न वर्ण की जरूरत, न आश्रम की जरूरत, केवल एक विश्वास की जरूरत है, फिर भगवान मिल जाएंगे। यदि कहो, कहते हैं ना कि प्रेम होना चाहिए, शर्त डालते ना भगवान, भाई विश्वास होने से प्रेम हो ही जाएगा। बिना प्रेम हुए विश्वास से भी मिल जाते हैं। भगवान का गुण प्रभाव बदलाया जाता है, वह क्यों? उसकी तरफ आकर्षित होने के लिए। गुण प्रभाव मिलाने वाले हैं। किसी के हम गुण प्रभाव सुनते हैं तो हमारे मन में उससे मिलने की इच्छा होती है। महात्मा और परमात्मा के गुण प्रभाव का ठिकाना नहीं है। यदि कहो महात्मा का तो ठिकाना रहता है, वहाँ जाकर हम मिल लेते हैं। परमात्मा का ठिकाना क्या है, जहाँ जाकर हम मिले? तो महात्मा से तो जाकर मिलना पड़ता है, लेकिन परमात्मा तो वहीं प्रकट हो जाते हैं। इससे ज्यादा और भगवान का क्या ठिकाना बताया जाए? तो प्रश्न यही, मिलते क्यों नहीं है? हमारे दिल में विश्वास नहीं है। किसी भी प्रकार हमें विश्वास पैदा करना चाहिए, प्रेम पैदा करना चाहिए। प्रेम भी न हो तो आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान बिना प्रेम के, बिना श्रद्धा के भी मिल सकते हैं। इतनी श्रद्धा विश्वास तो होनी चाहिए कि बिना श्रद्धा के भी भगवान मिलते हैं। इतनी श्रद्धा चाहिए क्या कि बिना श्रद्धा के भगवान मिलते हैं? चाहे इसे निश्चय कहो, चाहे विश्वास कहो, ये बात युक्ति संगत है, शास्त्र सम्मत है। भगवान श्री कृष्ण जी ऐसे ही थे। यदि कहो भी जबरन विश्वास नहीं करा सकते क्या? हम विश्वास नहीं करते तो वो जबरदस्ती हमारे अंदर विश्वास पैदा कर दे? यदि आपके विश्वास हो कि वे जबरन करा लेंगे, तब वो जबरन भी करा सकते हैं। एक कथा आती है, उतंग के आश्रम में भगवान गए। उतंग ने कहा, आप कौरव और पांडव का मेल करा कर आए हैं क्या? अच्छी बात है, करा दिया तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने कहा, नहीं उतंग जी, मैं मेल करा कर नहीं आया हूँ। वे सब आपस में माने नहीं, बात युद्ध किए, लड़ गए, मर गए। उत्तम ने कहा, फिर आपने मनाया क्यों नहीं? आप तो मना सकते थे उनको, किंतु आपने जोर नहीं दिया, इसलिए मैं आपको शाप दूंगा। भगवान ने कहा, मैं यह नहीं चाहता कि आप मुझे शाप दें और आपकी तपस्या नष्ट हो जाए। मैं पूर्ण परब्रह्म परमात्मा हूँ। मैं ही कच्छ मच्छ वराह मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेता हूँ। मैं इस समय मनुष्यों के रूप में हूँ। उसके प्रभाव उसके अनुसार मैंने चेष्टा की है, किंतु दुर्योधन आदि नहीं माने। तब उतंग ने कहा कि ओ, आप साक्षात परमात्मा हैं। हम तो केवल आपको वसुदेव जी का बेटा मानते थे। यदि आप साक्षात परमात्मा हैं, तो अपना स्वरूप दिखाओ, और यदि आप स्वरूप नहीं दिखाओगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा। ये उतंग ने प्रेम से कहा है। तो भगवान ने विश्व रूप दिखा दिया। यहाँ भगवान अपना प्रभाव दिखाकर विश्वास कराते हैं। बात ये थी कि वो पात्र था। उत्तंक ऋषि गुरु का भक्त था। गुरु भक्ति का फल भगवान को देना था, इसलिए वहां जाकर दर्शन दे दिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करना चाहिए। भगवान के समता, ज्ञान, शांति आदि गुण अनंत है। वे सर्वशक्तिमान है। जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बना सकते हैं। जड़ को चेतन बना देना असंभव बात है। असंभव के लिए ही है, परमात्मा के लिए नहीं है। जब वे ऐसे हैं तब पापियों का कल्याण क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। जब ऐसे परमेश्वर है तब हमें अपने कल्याण के लिए चिंता ही क्यों करनी चाहिए? उसके विरुद्ध के ऊपर निर्भर हो जाओ, फिर आकांक्षा के लिए जरूरत ही नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करें, स्तुति करें, जप करें, कोई आपत्ति नहीं है। साधन मानकर सब किया जाए। भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ध्यान में हमें दर्शन दो। यदि कहो कि साक्षात मिलने के लिए प्रार्थना करें तो हाँ, आपको साक्षात विश्वास हो तो करना चाहिए। आपको विश्वास हो तो आ सकते हैं। ध्यान में भगवान का आना ये तो साधारण बात है, यह तो अपने अधिकार की बात है। यदि को हमारे अधिकार की बात है तो हम प्रार्थना ही क्यों करें? प्रार्थना उसका मान करने के लिए, परमात्मा का मान रखने के लिए, अभिमान को मिटाने के लिए। क्योंकि परमात्मा का मान रखोगे तो आपका अभिमान मिटेगा, और भगवान अभिमान मिटाने में तत्पर रहते हैं। हमारे हित के लिए रहने नहीं देते अभिमान को, क्योंकि हमारे में बहुत बड़ा दोष है। आंख खोलना, मीचना अपने हाथ की बात है ना, इसी प्रकार भगवान का ध्यान करना अपने हाथ की बात है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय ते जब जाओगे सबल बदोंगो तो सिया पति राम चंद्र जी की जय। भगवान के स्वरूप का ध्यान है, उसके करने में अपना अधिकार है। यदि को अधिकार भगवान छीन सकते हैं ना, हम पाप का काम करें तो छीन सकते हैं। ये पाप का काम नहीं है, इसलिए हमें मदद देते हैं, छीनते नहीं है। वास्तव में अहंकार नहीं आना चाहिए, उससे पतन होता है। भगवान का हम ध्यान करते हैं, उसमें भगवान की मदद है, इसलिए हम ध्यान कर पाते हैं। भगवान से हमारा कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। वास्तव में हमारे अहंकार आ जाएगा तो भगवान ऐसा कर सकते हैं कि ध्यान में न आवे, उस नहीं आने में भी हमारा हित ही है। पूछा, आपने भगवान का ध्यान इतना सहज कैसे बताया? भगवान का ध्यान चिंतन अपने मुट्ठी में है, अपने हाथ में। उसमें जो विलंब हो रहा है उसमें अपने स्वयं ही कारण है। यदि पूछो इसमें भगवान की दया, भगवान की मदद की कमी रह गई क्या? नहीं, उनकी तो मदद है ही, दया है ही, हमारी कमी है। इसलिए सहज है कि हमारे ऊपर ही निर्भर है, हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न भी निर्भर है, भगवान भी निर्भर है, फिर हम करते क्यों नहीं? कि हमारी मूर्खता है, बेसमझी है। कोई कहे कि हम भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, भगवान आते नहीं, ध्यान बैठता नहीं, ये तुम्हारी भूल धारणा है। आप फोटो देखते हैं ना, जो आपको अनुकूल मालूम दे उसे आप पकड़ लेते हो। आप जैसा भगवान का स्वरूप मानो, आपके लिए वही भगवान का स्वरूप है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भगवान का ध्यान बड़ा सुगम है, जो मन में आए सो ध्यान कर लो। जब भगवान आपको मिलेंगे तब वे अपना यथार्थ रूप अपने आप ही बता देंगे। पहले जिस फोटो को लेकर आप भगवान का ध्यान करोगे, पहले उसी रूप में मिलेंगे, फिर यथार्थ रूप में मिलेंगे। सारी बात आपके ऊपर निर्भर है। हमें ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिसे छोड़कर आपका मन कहीं जावे ही नहीं। जिसे कभी भगवान का स्वप्न आ गया हो तो स्वप्न में जो स्वरूप आया उसका ध्यान करो। यदि स्वप्न में कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए हो तो फिर उनके असली स्वरूप का ध्यान करो। असली स्वरूप वर्णन में नहीं आ सकता। वर्णन तो जो बात देखी सुनी जाती है, शास्त्रों में देखी जाती है, महात्माओं से सुनी जाती है, उसी के आधार पर किया जाता है। मैं जो आपको वर्णन करूंगा वह शास्त्रों में जो बात देखी है उसी के आधार पर तथा अपना जो अनुभव है उसके आधार पर आपको जैसा साक्षात मानना चाहिए आपके हित की बात है, मान्यता में कभी मत आने देना। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो कहता हूँ वही भगवान का स्वरूप है, मैं जो मानता हूँ वही कहता हूँ। आप मान ले तो आपके भी लाभ की बात है। मैं नहीं कहता कि मैं जो वर्णन करूँगा ऐसा मैंने भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन किया है, ऐसा मैं कहता नहीं। बहुत गहरी बात है। मैं नहीं कहता हूं कि जो मैं वर्णन करूंगा वो मैंने दर्शन किया। आप जैसा समझो वैसा समझ लो। आनंदमय 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 नाथ सकल साधन कर ही ना कीनी कृपा जानी जन दीना। भगवान आकाश में स्थित होकर दिख रहे हैं, नेत्रों से नहीं मन से दिख रहे हैं। मन से भगवान का स्वरूप अद्भुत अलौकिक है। पूर्णिमा के चंद्रमा के ज्यों भगवान का स्वरूप चमक रहा है। भगवान की अवस्था मानो 12 बरस की हो। भगवान आकाश में थोड़ी दूर पर खड़े हैं, हंस रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, हमारी ओर देख देख कर खूब हंस रहे हैं। उनकी हंसी, उनके नेत्रों की चपलता मन को इतना आकर्षित कर रही है कि उसका वर्णन करना एक भार मालूम देता है। भगवान के स्वरूप के रंग की तुलना कोई करना चाहे तो ऐसा कोई रंग दुनिया में दिखता ही नहीं है। यदि कहा जा सकता है कि श्याम वर्ण है तो वो अद्भुत श्याम है। बिजली की चमक का उदाहरण दे तो बिजली स्थायी नहीं है और बिजली नेत्रों को गर्मी देती है। भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं है। भगवान का स्वरूप चम 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 चमक रहा है। उनके चरण चिकने कोमल और चमकीले हैं, अंगुलियों के नाखून भी अद्भुत हैं, नूपुर पहने हुए हैं। बिजली की चमक का उदाहरण दें तो वो अस्थाई है, नेत्रों को गर्मी देती है। भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं है। भगवान का स्वरूप चम 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 चमक रहा है। उनके चरण चिकने कोमल और चमकीले हैं, अंगुलियों के नाखून भी अद्भुत हैं, नूपुर पहने हुए हैं। वे जब नाचते हैं तब मधुर ध्वनि निकलती है। वे कानों को ऐसी प्यारी लगती है कि मैं सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। भगवान आकाश में खड़े हैं, चरणों के तलवे दिखते हैं, गुलाबी रंग की झलक है, ध्वजा अंकुश आदि के चिन्ह हैं। अब भगवान नीचे को उतर गए, चरणों के ऊपर का भाग अब स्पष्ट दिखता है। भगवान के चरणों को छूने से शरीर में रोमांच होने लग जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है। जैसे भगवान के चरण हैं, ऐसे ही गिरये जानू और जंघाएं हैं। भगवान पीताम्बर पहने हुए हैं, वो रेशमी पीताम्बर चमक रहा है। भगवान तागड़ी पहने हैं, भगवान की नाभि बड़ी गंभीर है। भगवान केशरानी जामा पहने हैं, लाल रंग का दुपट्टा गले में डाले हैं, गले में अनेक रंग की मालाएं डाले हैं, कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है, छाती उनकी चौड़ी है, दो भुजाएं हैं, हाथ में वंशी लिए हुए हैं। कभी कभी भगवान वंशी को बजाते हैं और कभी भगवान बजाने के बाद फिर खिलखिलाकर हंसते हैं। वंशी की ध्वनि अमृतमय है, उनकी मुस्कान अद्भुत अलौकिक है। जब हंसते हैं तब दांतों की पंक्ति दिखती है, दांत अंदर से एकदम बराबर है, वाणी उनकी बड़ी मीठी है, मन को आकर्षित करने वाली है, बंसी की ध्वनि कानों को मोहित कर रही है। भगवान हंसते हैं तो मानो प्रेम का प्रवाह चलता है, आनंद की वर्षा होती है। कपोल जिनके चमचम चमक रहे हैं, जिसमें गुलाबी रंग की झलक है, कानों में कुंडल है, कुंडल की रोशनी कपोलों पर पड़ती है, नेत्र चंचल है, तिरछी नजर से देख रहे हैं, मानो वो अपने नजर रूपी बाण मारकर हमें घायल करते हो। यह एक आकर्षण करने वाला बाण है। भगवान में ज्ञान का प्रकाश है, नेत्रों से ऐसा प्रतीत होता है मानो ज्ञान का भंडार है। भगवान प्रेम भाव से देखते हैं, मानो प्रेम की रस्सियों से मुझे अब बांध रहे हैं। मेरी शक्ति नहीं है कि उनके नेत्रों से अपने नेत्रों को हटा सकूं, इतने सुंदर, इतने आकर्षक हैं। नेत्रों से प्रेम शांति और नेत्रों से प्रेम और शांति की वर्षा हो रही है। प्रेम शांति और आनंद ये भगवान का निराकार स्वरूप है। यह सारे गुण जो भगवान के हैं, वे भाव रूप है, प्रतीत होता है, इन सब की वर्षा हो रही है। ज्ञान आनंद शांति प्रसन्नता, ये गुण भगवान के नेत्रों से अहर्निश बहते ही रहते हैं। भगवान का मस्तक चमक रहा है, मस्तक पर श्रीधारी तिलक और शीर्ष पर काले रंग का केश है, केश गुड़े हुए हैं और चमक रहे हैं। शीश पर मोर मुकुट है, जिसमें घूंची मोती आदि गूंथे हुए हैं। भगवान आकाश में खड़े हैं, एक चरण टेके हुए हैं, एक चरण एडी पर लगाए हुए हैं, बांके रूप में खड़े हैं। जिनका चरण, जिनकी कमर, जिनका मस्तक और मुकुट बांका है, इसीलिए आपका नाम बांके बिहारी है। अपने भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। आओ प्रभु, आओ हमारे हृदय में ही विराजमान रहो। नहीं, आप तो हृदय में ही रहते हैं, आज तक मैंने भूल की, मैंने अपने हृदय में विराजमान आपको टटोला ही नहीं, बारी बार भटकता रहा। आज आपने मुझे कृपा करके अकस्मात दर्शन दे दिए। प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखो, ऐसा करके भगवान अपने हृदय में विराजमान हो गए हैं। कमल के पुष्प पर भगवान खड़े हैं, अब भगवान हमारे हृदय में नाच रहे हैं, मधुर भाव से गान कर रहे हैं। मनी मन में अपने हृदय में उनको नाचते हुए देखकर खुश हो जाओ। चारों तरफ भगवान के भक्तों की मंडली लगी हुई है, वे सब भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान की स्तुति गा रहे हैं, सब भगवान को देख देख कर खूब प्रसन्नता से हंस रहे हैं, और भगवान अपने भक्तों से मिल मिल करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, प्रेम में मुग्ध हो रहे हैं। बाहर में देखता हूँ तो बाहर में भी भगवान दिख रहे हैं। अब मेरी मानसिक दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ भगवान ही दिख रहे हैं। भगवान में क्षमा अपार है, प्रेम की तो आप मूर्ति हो, सुंदरता रूप लावण्य, इसे देखकर कामदेव और रति भी मोहित हो जाते हैं। कोटि कोटि कामदेव, कोटि कोटि रति भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सारे संसार में जो रूप है, वो रूप और लावण्य है, वह उनके एक रूम का ही पसारा है। यद्यभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्त देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त कांति युक्त शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। ऐसा भगवान का रूप और लावण्य है, किसकी शक्ति है कि वहाँ से नेत्र हटा ले। जब वास्तव में भगवान के दर्शन होंगे तब नेत्र वहाँ से कौन हटा सकता है। ऐसे ऐसे उसे होश में होश ही नहीं रहता है, वह चित्राम के भांति रह जाता है। सारे गुणों में किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, जो उपमा है वह तो स्तुति में निंदा है। जब उनके रूप का ही वर्णन अलौकिक है तब गुणों की तो बात ही क्या कहे। उनकी प्रत्येक क्रिया में क्षमा शांति दया का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। हे प्रभु, आप अंतर्यामी सर्वेश्वर सर्वाधार दया सागर है, प्रेम की मूर्ति है। आप में सारे गुण आसीन असीम है, अपरिमित है, परिमित नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव हरि दामोदर ये सब आपके मुख्य मुख्य नाम है, नहीं तो आपको तो हजारों हजारों नाम है। नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्ण आनंद घन आनंद आनंदी आनंद अपार आनंद असीम आनंद प्रत्यक्ष कैसा आनंद कैसी शांति कैसी शांति कैसी शांति है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।